नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनो में से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रैलियां की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने केबिन क्रू की हड़ताल के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मिले वोट ने भारत को रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक देश बनाया और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। जनता के वोट के कारण ही इसी तरह की कई उपलब्धियां संभव हो सकी है। आज सुबह करीमनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वेमुलावाड़ा के एक जनसभा में श्री मोदी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस की नीति परिवार प्रथम की है, जबकि भाजपा की प्रतिबद्धता राष्ट्र प्रथम की नीति के प्रति है। श्री मोदी ने कहा कि ये राजनीतिक दल परिवार द्वारा परिवार के लिए परिवार के जैसे हैं और भ्रष्टाचार तथा तुष्टिकरण इन्हें जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत से मुख्य प्रचारक आज अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में अपनी पहली राजनीतिक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रायबरेली के बंचवड़ावा क्षेत्र में प्रचार किया और जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों और मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी दोगुना कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शाहजहांपुर में एक जनसभा में भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी झूठे वायदे करती है। उन्होंने बाद में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पार्टी उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में लखीमपुर खीरी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और सशक्त बनाया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि उनके नेता के जेल में होने के बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अपने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल लगभग 64.58% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति के बावजूद सभी वर्गों के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चरण में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग के अनुसार अभी तक असम में 81.61% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में 58.18, छत्तीसगढ़ में 71.06, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 69.87% मतदान दर्ज किया गया। गोवा में 75.20%, गुजरात में 58.98, कर्नाटक में 70.41, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44, उत्तर प्रदेश में 57.34 और पश्चिम बंगाल में 75.79% मतदान दर्ज हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रूसी सेना में लड़ाकों की भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कहा है कि उससे मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देशभर में भोले भाले नौजवानों को विदेशों में आकर्षक नौकरियां दिलवाने का झांसा देता था। इस मामले में सीबीआई ने केरल और मुंबई के दो दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार भारतीय नागरिकों को लड़ाकों की भूमिका के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था और उनकी इच्छा के विरुद्ध रूस यूक्रेन युद्ध में अग्रिम ठिकानों पर भेजा जाता था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालक दल के सदस्यों की हड़ताल के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी हुई। एयरलाइंस के चालक दल के कर्मचारियों ने प्रबंधन की कुछ नीतियों के खिलाफ सामूहिक रूप से छुट्टी ले ली। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से कल रात से उड़ानें बाधित रही। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और बेंगलुरु के लिए एक घरेलू विमान सेवा रद्द कर दी गई। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान रद्द होने के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने को भी कहा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज तेज हवाएं चलने और आंधी तूफान तथा बिजली चमकने के साथ मध्यम वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि देश के दक्षिणी क्षेत्रों और पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी की स्थिति में धीरे धीरे कमी आएगी। राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में आज तक तथा गुजरात में अगले 5 दिनों तक उमस भरी गर्मी की स्थिति रहने का अनुमान है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस आज संरक्षण, सहायता, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सहायता और एकजुटता की आवश्यकता वाले लोगों के साथ काम करने वाले लाखों कर्मचारी और स्वयंसेवकों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की विचारधारा और मानवीय कार्य के सम्मान में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट एक अग्रणी स्विस स्वयंसेवक थे जिन्होंने लगभग 160 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन 8 करोड़ लोगों का एक विश्व स्तरीय मानवीय नेटवर्क है। यह नेटवर्क आपदा, संघर्ष और स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या का सामना करने वाले लोगों की सहायता करता है। बांग्लादेश में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी 163वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कल श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि रविन्द्र साहित्य पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ हमारा मुख्य सहारा था और उनके गीत बांग्लादेश के महान मुक्ति संग्राम में संघर्ष की प्रेरक शक्ति थे। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संदेश में कहा कि बंगाली कविता, गीत, लघु कथाएं, उपन्यास, निबंध, नाटक, गीतों, नाट्यों और नृत्य नाटकों को रविन्द्रनाथ टैगोर के जादुई हाथों में पूर्णता मिली है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंद में 86 रन बनाए, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने राजस्थान को 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 पर ही रोक लिया था। रियर एडमिरल राजेश धनकर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल ने कल इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सिंगापुर का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना और भारत और सिंगापुर के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में वर्तमान समुद्री सुरक्षा की स्थिति और उभरते खतरों को कम करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहयोग के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आईएफसी सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच विचारों के परस्पर समन्वय पर भी चर्चा की। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक जीते। इस चैंपियनशिप के दोनों श्रेणियों में भारत ने कुल 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।